और फिर एक और चीज़ जिसका वज़न क़यामत के दिन बहुत है, वो हुस्ने खुल्क है। यानी अच्छी आदत अगर शरीयत के मुताबिक हो और अल्लाह की पसंदीदा हो तो वो हुस्ने खुल्क है। अपना अख़लाक अच्छा कीजिए। और दो जगह आपको अपना अख़लाक दिखाना है, एक है अल्लाह के साथ और एक है बंदों के साथ। अल्लाह के साथ क्या है अच्छा अख़लाक? लिखिए, अल्लाह के हर हुक्म पर मुतमईन, राज़ी ब रज़ा, जो किया अच्छा किया, अल्लाह के हलाल करदा को लेना और हराम से बचना। इसी तरह मखलूक के साथ मामलात में नरमी, लोगों के हकूक खुश दिली से अदा करना, हंसमुख रहना, हाजतमंदों पर ख़र्च करना। अख़लाक़ हसना की अहमियत क्या है? कौम और अफराद की हुस्ने खुल्क से पहचान। हुस्ने खुल्क का हामिल शख्स अल्लाह से करीब और इसके बंदों के करीब होता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुस्ने खुल्क की ख़ास तलकीन करते थे। लिखिए एक सवाल, अख़लाक़ हसना के फ़ज़ाइल क्या हैं, क्या मिलता है? तो लिखिए एक हदीस सिलसिले सहीहा की रिवायत 2439, फरमाया कि उम्मत में सबसे बेहतर बंदे वो हैं जो वादा पूरा करने वाले, नरम मिजाज और खुश अख्लाक हों। अपने आप से पूछिए, क्या मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं? सब हैं, दो है या एक है? या सब हैं लेकिन कमी है, तो उसको दूर करना है। फिर दूसरी रिवायत भी सिलसिला सहीहा की है 2393, बिला शुबा अल्लाह ताला मेहरबान है, मेहरबानी और बुलंद अख्लाक को पसंद करता है और रद्दी अख्लाक से नफरत करता है। तो अल्लाह हमें ऐसा अख्लाक ना दे जो कल रद्द कर दिया जाए। और सही बुखारी 6035, तुम में से बेहतर शख्स वह है जिसका अख्लाक सबसे अच्छा हो। और अल्लाह ने मुसलमानों को क्या कहा? साबित कदम रहो और अपने अख्लाक को अच्छा करो। एक सवाल लिखिए, कैसे हुस्ने खुल कैसे हासिल होता है? तो पहली चीज़ है दुआ मांगिए, अल्लाह से कहिए कि अल्लाहुमा कमा हसन तखल की फहसिन खुलो की। फिर दूसरा तरीका होता है फहम और तदब्बुर के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। तो अख्लाक कैसे अच्छा होगा? जब समझ जाएंगे, गौर व फिक्र करेंगे तो आपका अमल भी तो उसके मुताबिक होगा। और कुरान पाक में हुस्ने खुल्क की बहुत सी टिप्स हैं। फिर सीरत का मुतालिया कीजिए, क्योंकि आप तो थे ही कौन, काना खुलुका खुल कुरान। फिर इसी तरह हुस्ने खुल्क के अच्छे और बद अख्लाकी के बुरे अंजाम पे नज़र रखें। इर्द गिर्द देखा करें कि जो लोग अच्छे अख्लाक वाले होते हैं उनका अंजाम कितना बखैर होता है और इसके बरक्स दूसरों का बुरा होता है। फिर इसी तरह नमाज और रोज़े का खसूसी अहतमाम कीजिए, क्योंकि इन दोनों में सब्र है और सब्र के बाद बंदा दूसरों की बातों पे मोहब्बत से, दरगुजर से वक्त गुजारता है और बर्दाश्त पैदा होती है और वो इंसान को बाखलाक बना देती है। और इसी तरह से अच्छे लोगों की सोहबत में रहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू सईद खुदरी की रिवायत है, ईमान के लिहाज से मोमिनों में मुकम्मल वो हैं जो इनमें से अखलाक के लिहाज से बहुत बेहतर हों, और जो अपने कंधे बिछा कर रखते हों, और जो मोहब्बत करते हों और इनसे मोहब्बत की जाती हो। और ऐसे शख्स में तो कोई खैर नहीं जो ना खुद मोहब्बत करता हो और ना इससे मोहब्बत की जाती हो। खुद से पूछिए, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं क्या? आप कंधे बिछा के रखते हैं? आप वाकई मोहब्बतें लेते और देते हैं? और ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2467। अल्लाह ताला हमें बड़ा अख्लाक कर दे। और ये वो चीज़ें हैं जो दुआओं से भी मिल जाती हैं अगर इंसान संजीदगी से मांगे। नेक्स्ट टॉपिक लीजिएगा, कितने खुश नसीब थे ये लोग। कौन? मिलियनेरियन, बिलियनेरियन, मिस वर्ल्ड, जब जिसका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया? नहीं, यहाँ कुछ और लोगों की बातें हैं। और वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो, जो इस आयत के मिसदाक बने कि दोजख से बचा लिया जाएगा वो जो बहुत तकवा वाला हो और अपने माल की ज़कात देता हो। अल्लज़ी युती मालहू लियतज़क्का। आप जानते होंगे कि यह आयत अबू बकर सिद्दीक की शान में नाजिल हुई। और उमर खुश नसीब हैं कि इन्हें हदीस में बशारत दी गई कि मैंने जन्नत में एक सफ़ेद महल देखा और पूछा कि ये किसका महल है। मुझसे कहा गया, उमर बिन अल ख़त्ताब का। अल्लाह अकबर, दुनिया में पता लग गया कि जन्नत में महल होगा। और उस्मान खुश नसीब थे कि इनके लिए दुआ की गई, अल्लाह उस्मान के नए पुराने सब गुनाह माफ़ कर दे। और दुआ मांगने वाला कौन है? तो फिर कबूल करने वाला क्यों नहीं करेगा? پھر علی رضی اللہ عنہ خوش نصیب تھے، یہ ایسا شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور رسول ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضرت علی کو دنیا میں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ سعد بن معاذ خوش نصیب تھے کہ فرمایا کہ ان کے لیے رحمان کا عرش بھی جھوم اٹھا۔ غزوہ خندق کے بعد ان کو ایک زخم لگا تھا، لیکن ان کی دعا کی وجہ سے وہ زخم بند ہو گیا، اور جب بنو قریظہ کا برا انجام دیکھ چکے تو وہ زخم پھوٹا اور اسی سے ان کا انتقال ہوا۔ عبداللہ بن عمر الانصاری کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے آمنے سامنے بغیر ترجمان کے گفتگو کی۔ کبھی سنا آپ نے پہلے عبداللہ بن عمر؟ اور اسی طرح حنزلہ کے بارے میں فرمایا کہ رحمان کے ملائکہ نے ان کو غسل دیا، اسی لیے ان کو کہتے ہیں غسیل الملائکہ۔ کیا محسوس ہو رہا ہے ان لوگوں کے بارے میں سن کر؟ اب دیکھیے کہ ہم لوگوں کو کن چیزوں سے پرکھتے ہیں اور اللہ کا نقطہ نظر کتنا مختلف ہے ہم سے۔ اللہ اکبر، جتنا زیادہ آپ سوچیں گے آپ کے اندر بھی نیکیوں کی خوب پیدا ہوگی۔ ان لوگوں کو جان کر، ان کے بارے میں پڑھ کر حقیقت میں دل میں ضرور بو جاتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنا اور ان کا تقابل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم اس زندگی سے سرخرو ہو کر جائیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے ان کو تو اتنی نعمتیں ہمارے مقابلے میں نہیں دیں جتنی ہمیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں کم ہی جانتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ لیجئے، کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ اور یہ کتنے بد نصیب تھے۔ اب انہی کی باتیں جب ہم نے پڑھا، اللہ کی نظر میں خوش نصیبی کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے حکموں کو ماننا، رسولوں پر ایمان، ان کی سنتوں کی پیروی، مخلوق کے ساتھ نرمی اور اچھا سلوک کرنا۔ دوسرا لکھیے کہ بد نصیبی کیا ہے اللہ کی نگاہوں میں؟ کون بد نصیب ہے؟ وہ جو اللہ کو ایک نہ مانے، اس کی اطاعت نہ کرے، رسولوں کا انکار اور ان کی توہین کرے، مخلوق خدا پر ظلم کرے اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرے۔ یہ دیکھیے دو کردار ہیں، خوش نصیب بمقابلہ بد نصیب۔ خوش نصیبوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ اجمعین اور باقی صحابہ کرام اور اللہ سے محبت کرنے والے۔ اس کے برعکس بد نصیب کون ہے؟ فرعون، قارون، نمرود، ولید بن مغیرہ، ابو لہب اور تمام مشرک اور منافقین۔ اور ان کے بھی نام ہم نے اس لیے لیے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے، ورنہ آپ اور میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پھر آپ دیکھیں سورہ ہود آیت 108 میں اللہ تعالیٰ نے خوش بخت لوگوں کی ایک نشانی بتائی، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، یہ بے انتہا بخشش ہے۔ تو اس میں کیا پتہ چلا؟ کہ خوش نصیبی اس کی جن کو اللہ دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دے دیں۔ ذرا سا وقفہ لیجئے، سوچئے، خلاصہ کریں، گیپ لیجئے، دیکھیے کہ کیسے تھے وہ لوگ جو بد نصیب تھے۔ فرعون، اس کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ قارون کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، فخسفنا بہی وبداری۔ ولید بن مغیرہ، اس کے بارے میں کہا گیا، میں اس کی جان سختی سے نکالوں گا۔ اور امیہ بن خلف کے بارے میں فرمایا، بربادی ہو ہر عیب چین، یعنی عیب لگانے والا اور چغل خور کے لیے۔ ابو لہب، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا۔ الاس بن وائل، جس کو عذاب کی وعید سنائی گئی، ہرگز نہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے ہم اسے لکھیں گے اور اسے زیادہ سے زیادہ عذاب دیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ خوش بختوں کے مقابلے میں یہ بدبخت لوگ تھے۔ تو اس وقفے میں سوچئے، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت اور معصیت سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی غفلت اور گناہ سے بچ جائیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ غفلت، بالکل ہیڈ لیسنس، اور معصیت یعنی گناہ۔ مثلا قلت توفیق، یعنی توفیق چھن جاتی ہے نیکیوں کی۔ فساد رائے، یعنی آپ کی رائے بڑی مفسدانہ ہو جاتی ہے۔ خفائے حق، हक़ को छुपाने लगते हैं आप। फसादे कल्ब, दिल में एक अजीब सा फसाद है, यानी दिल कई अरमानों और ख्वाहिशों की अमादगाह बना रहता है। फिर इसी तरह से गुमनामी, फिर इसी तरह वक्त का ज़ाया होना या ज़ाया करना, नफ़रत खल्क, लोगों से नफ़रत होने लगती है, अल्लाह और बंदे के बीच में वहशत होती है, बंदे की दुआ कबूल नहीं होती, दिल सख्त हो जाता है, रिस्क और उम्र से बरकत ख़त्म हो जाती है, इल्म से महरूमी, ज़िल्लत से साबका होता है और दुश्मन एहानत करता है, सीना तंग बुरी सोहबत और इससे दिल फासिद होता है और वक्त ज़ाया होता है। फिर फिक्र तारी रहती है, रोज़ी में तंगी और दिल में अफसुर्दगी पैदा होती है, याफ्तें ऐसे पैदा हो जाती हैं जैसे सरसब्ज खेती को आग जला डालती है। इतात रब्बी से इन आफ्तों की मुकाबिल चीज़ें पैदा होती हैं। रंजो फिक्र और तंगी को दूर करने में इस्तग़फ़ार की तासीर के सिलसिले में तमाम मज़ाहिब के लोग और हर उम्मत के हुक्मा मुत्तफिक हैं, यानी कसरत से इस्तग़फ़ार कीजिए, आप देखेंगे दिल से बोझ हट जाएगा। और इसी तरह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला गम का इलाज है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हर उम्मत के हुक्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं, यानी उनका इस पे कह लीजिए कि शरह सदर है कि मासी यानी गुनाह और फसाद से रंजो फिक्र, खौफ और हुज़न, सीने की तंगी और दिल के अमराज पैदा होते हैं। गुनागार नफसानी लज्जतों से जब उकता जाते हैं तो अपने दिल की अफसुर्दगी और रंजो गम को मिटाने के लिए फिर गुनाह करते हैं। इसी बारे में गुनाहों का सुरखेल शायर कहता है, यानी जो खुद गुनाहों में पड़ा हुआ था वो क्या कहता है, एक जाम तो मैं लज्जत के लिए पीता हूँ और दूसरे जाम से फिर इसका इलाज करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी पहला जाम पीने से मज़ा आता है लेकिन दिल दुखी हो जाता है, फिर एक और शराब का ग्लास लेता हूँ ताकि दुखी दिल का इलाज करूँ, फिर जबकि गुनाहों और गलतियों के दिल पर ये असरात पड़ते हैं तो इनकी दवा बस तौबा और इस्तग़फार ही है। तो क्या सीखा कि अल्लाह के ज़िक्र से गफलत और मासीत से जन्म लेने वाली बीमारियाँ बहुत बड़ी हैं, तौफीक छिन जाती है, नफ़रत हो जाती है मखलूक से, अल्लाह और बंदे के दरमियान मोहब्बत नहीं बल्कि वहशत आ जाती है, दुआ कबूल नहीं होती, दिल सख्त होता है, सीना तंग होता है, रिस्क और उम्र से बरकत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह की इताअत से इन सब बीमारियों का इलाज मुमकिन है। इस्तग़फार की कसरत इंसानों को इन तमाम आफतों से छुटकारा दिला सकती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों की जमात तुम सदका व खैरात करो, कसरत से इस्तग़फार किया करो, क्योंकि मैंने जहन्नुम में तुम औरतों को ज़्यादा देखा है। इब्ने माजा 4003। तो बात तो बहुत सिंपल है, अल्लाह करे कि समझ आए। जैसे कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां गरचे बहुत शोख नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो अगली टिप पे चलते हैं, ख़वातीन का ख्याल रखें, नरमी का मामला करें, यानी मर्द होने का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। आज वेस्ट में भी ये परसेप्शन दे दिया गया कि मुसलमान औरतें बड़ी मज़लूम हैं, हालांकि देखिए कि अल्लाह ताला ख़वातीन के साथ मामला करने में क्या फरमाते हैं। सूरत निसा आयत 19 में आता है, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इनके साथ हुस्ने मुआशरत के साथ रहो। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान उल्फत और मोहब्बत डाल दी। सूरत रूम है आयत 21, यदि वजल बैनकुम मवद्दतं व रहमा, जवानी में मवद्दत होती है, सेक्सुअल लव, बुढ़ापे में रहमत में ढल जाता है, जब एक दूसरे की दवाइयों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की बीमारियों का ख्याल रखते हैं। वैस ने कहा कि बस लव एट फर्स्ट साइट, अमूमन बुढ़ापे में नॉन मुस्लिम औरतें तन्हा होती हैं क्योंकि उनका हुसन ख़त्म हो चुका होता है, भंवरों ने उनकी खूबसूरती ली और चले गए, बुढ़ापे में उनके पास कोई नहीं होता, तन्हा फिरते हैं लोग। इस तरह हदीस में आता है कि औरतों के साथ खैर की नसीहत किया करो क्योंकि वह तुम्हारे हाथ में अमानत हैं। और एक रिवायत में कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर हो, मैं तुम में अपने अहलोयाल के लिए सबसे अच्छा हूँ। हम सबसे अच्छे किसके साथ हैं? सेक्रेटरी के साथ, बाहर के लोगों के साथ, बॉस बड़े अच्छे हैं, और घर में आते ही एक अजीब सा रोब का माहौल तारी हो जाए। खुश नसीब घर वो है जो उल्फत से भरा हो, तकवा रजामंदी और मोहब्बत की असास पर कायम हो। क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत को अल्लाह के तकवे और रजामंदी पर उठाया है बेहतर है, या वो आदमी जिसने अपनी बुनियाद टूटते बिखरते किनारे पर खड़ी की, वो हमारा जहन्नम की आग में गिर गई और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता तो क्या पता चला। औरतों का ख्याल रखिए। देखिए, अगर ये चीज़ें आम कर दी जाएँ तो कम से कम जो लोगों के जहनों में मुसलमान औरतों के बारे में गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। तो बहरहाल, खुश रहने का एक राज ये भी है कि अपने घर की औरतों को, यानी बीवी है, बहन है, माँ है, बेटी है, उसका ख्याल रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मर्द इस मामले में बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं। फिर आप देखिए कि ख्वातीन से नरमी, सूरत निसा आयत 19 में जो देखी बात, और अल्लाह के नबी ने भी अपने आखिरी कलिमात में से वमा मलकत अईमानुकुम, यानी अपनी औरतों और अपने मुलाजमों का ख्याल रखो, अच्छी नसीहत की। और आपने अपने अमल से भी अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करके दिखाया। और ये रिवायत जो हमने पढ़ी कि तुम में से बेहतर कौन है, ये इब्ने माजा की है 1977, और इब्ने अब्बास इससे रावी हैं। सवाल है कि अहलोयाल के क्या हकूक़ हैं एक मर्द के ज़िम्मे, यानी बीवी और बच्चों के क्या हकूक़ हैं। तो पहली बात है कि अपनी बीवी की दीनी तालीम का इंतज़ाम करना मर्द की ज़िम्मेदारी है, पर मर्द ने ख़ुद भी तो ली होगी तालीम, फिर ही करेगा ना। यहाँ तो झगड़े शुरू हो जाते हैं, घर से ही बातें शुरू होती हैं। फिर इस तरह खैर और हक बात की नसीहत और तलकीन करनी चाहिए अपनी बीवियों को, घर वालों को। मोहब्बत और उल्फत से रहना चाहिए घर वालों के साथ, और बीवी के नान नफ़के को आसन तरीके पे और जायज़ ज़राए से पूरा करना चाहिए, ये अल्लाह की सुन्नत है। अब आप देख लीजिए कि आज असल में क्या हो रहा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों के बारे में भलाई की वसीयत करता हूँ क्योंकि वो पसली से पैदा की गई हैं, और पसली में सबसे ज़्यादा टेढ़ा इसके ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो इसे तोड़ डालोगे, और अगर इसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही बाकी रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें औरतों के बारे में अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ। ये बुखारी की रिवायत है 5186। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा नमूना बना दे। और आप देखिए, फिल्मों में, फिक्शन में, नॉवेल्स में अमूमन शादी से पहले का रोमांस दिखाते हैं और उसके बाद ख़त्म। जैसे वो कहते हैं ना, नो लाइफ आफ्टर डेथ, तो नो लाइफ आफ्टर मैरिज, नो रोमांस आफ्टर मैरिज। अल्लाह ताला हमारे कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त कराए। जब हम ऐसी चीज़ें बाहर की दुनिया में देखते हैं तो वाकई फिर हमें ऐसे ही लगता है कि मुसलमान बड़े बोरिंग होते हैं। अगली चीज़ लीजिए, मुस्कुराहट से आगाज़ किया जाए। किसका? हर बात का। मेहमान को देखें तो मुस्कुराएं, सुबह उठें तो मुस्कुराएं, बच्चे को देखें तो मुस्कुराएं। बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बीवी शौहर का इस्तकबाल मुस्कुराहट से करे और शौहर बीवी के लिए मुस्कुराए। जी, कितनों का अमल है इस पे? आपका क्या अमल है? शौहर को देख के मुस्कुराते हैं या गुस्सा करते हैं, देर से आए हैं? छोटे बेबी को देखे हम कितना मुस्कुराते हैं, बड़े बच्चों को देखे हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि अब वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन यह कि मुस्कुराहट हर जगह, मुस्कुराहट इत्तेहाद और मुसालहत का ऐलान है, इसको हाईलाइट करें। यानी आप एक दूसरे के बीच में सुलह का एक पुल बना लेते हैं मुस्कुराहट को। मुस्कुराकर आप लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में सुलह है। फरमाए, अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते मुस्कुराते थे। इब्तदा सलाम से की जाए, बस अपने आप को सलाम करो, अल्लाह की जानिब से मुबारक सलाम। एक दूसरे को सलाम करे जब तुम्हें सलाम किया जाए तो इससे बेहतर जवाब दो, और कम से कम फिर इसी को लौटा दो। सूरत निसा 86 है ये। इसमें यह है कि घर में दाखिल होते वक्त दुआ की जाए, अल्लाह हम तुझसे अच्छा दाखिल होना और अच्छी वापसी चाहते हैं। अल्लाह के नाम से हम दाखिल हुए और अल्लाह के नाम से निकलेंगे, और अल्लाह पर ही हमारा भरोसा है। घर की खुशगवारी इससे भी होती है कि फरीकैन नरमी से बात करें, ये भी नोट करें। अक्सर हम बच्चों से नरमी से बात कम ही करते हैं। मेहमानों से कैसे करते हैं, दोस्तों से कैसे करते हैं? मैं किसी के पास गई और वो वाकई बड़ी नरमी से बात करती हैं, ऐसे लड़चक के मोहब्बत से। तो जब मैं गई तो उनकी बेटियां भी थी, यंग जवान बच्चियां थी। तो मैंने तो सही बात पे कियास किया, मैंने कहा योर मॉम इज़ सो जॉली, सो नाइस। तो उन बच्चियों ने मेरे मुझे कहा रियली? फिर मुझे समझ आ गया कि वो अपनी बच्चियों के साथ कैसी हैं। तो आज सब ज़रा अपनी बच्चियों से पूछे कि मैं कैसी हूँ। और अल्लाह क्या फरमाते हैं, और कहो ए मेरे बंदो भली बात कहो। शायर कहता है कि इसका कलाम तो जादू है, अगर वो परहेज़गार मुसलमान तक को कत्ल ना कर डालता तो जायज़ जादू होता। अगर देर तक गुफ्तगू करे तो उकताहट में ना डाले, अगर मुख्तसर करे तो मुखातिब आरज़ू करे कि काश गुफ्तगू मुख्तसर ना हो। काश के मर्द और औरत दोनों ही ऐसी बातों से बचे जो दिल शिकनी करने और जज्बात भड़काने का काम करती हैं। काश के वो दोनों ही हर एक के खुशगवार पहलू पर नज़र रखें, कमज़ोर इंसानी पहलू से सरफे नज़र कर लें। मर्द अगर बीवी के महासिन यानी उसकी खूबियाँ शुमार करे और इसकी कमी से सरफे नज़र कर ले तो वो मुतमईन और खुश रहेगा। हदीस में आता है, कोई ईमान वाला मर्द मोमिना से नफरत ना करे, और अगर इसकी एक आदत ना पसंद होगी तो दूसरी अच्छी लगेगी। यानी वही बात है कि ये नहीं तो ये। बकौल शायर, ऐसा कौन है जिसने कभी गलती ना की हो और जिसके पास बस नेकी ही नेकी हो? कौन है जिसके फजाइल की तलवार कभी कुंद ना पड़े, यानी उसमें काटने की सलाहियत कम ना हो? महासिन यानी खूबसूरतियों या खूबियों का घोड़ा लड़खड़ाए नहीं। मुराद है कि हर बंदे में कमी होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंपनसेशन, कुछ ना कुछ इधर उधर की चीज़ें तो आएंगी। अगर अल्लाह की रहमत और फजल ना होता तो तुम में से कोई किसी पर अच्छाई ना जतलाता। यानी ये अल्लाह की रहमत से और फजल से ही होता है कि आप दूसरे से अच्छे हो जाते हैं। घरेलू मसाइल अक्सर छोटी और हकीर बातों पर पैदा होते हैं। मैंने दसियों ऐसे छोटे छोटे मसले देखे जो जुदाई पर ख़त्म होते, मुंतजमिन नतीजा यानी एंड पे बस फिर जुदाई हो जाती है, और बहुत छोटी बातों से इनकी शुरुआत हुई। आप देखिए, अक्सर झगड़ा जहाँ भी होता है ना, आप कहते हैं बात क्या थी, हो क्या गया? शौहर बीवी को देखिए, जवान बच्चे के साथ देखिए, जहाँ आवाज़ बुलंद होगी कोई आके पूछे क्या हुआ, आप कहते पता नहीं। हाँ, मसलन सबब यह था कि घर की सफाई ना हुई थी, खाना वक्त पर नहीं लगाया गया, कभी ऐसा हुआ कि औरत चाहती थी कि घर में ज़्यादा मेहमान ना आया करें। इसी तरह के मसाइल की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने घर को तबाह कर दिया। हम सब के लिए ज़रूरी है कि अपनी हद में रहें, हकायक से वाकफियत पैदा करें, अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ करें, वहमो ख्याल और इस मेयार के पीछे ना पड़ें जो दुनिया के उलूल अज़म अफराद को ही नसीब होता है। हम इंसान हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हिद्दत यानी गर्मी भी पैदा होती है, हम कमज़ोर हैं, गलतियाँ भी करते हैं। हमें इस दवाजी उमूर को बेहतर तौर पर चलाने वाले इसबाब ढूंढने चाहिए। इमाम अहमद बिन हम्बल की तबीयत और मिजाज को नमूना बनाएं। सुनिएगा ज़रा इनका अमल। इनकी बीवी उम्मे अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो फरमाया, हम 40 साल साथ साथ रहे लेकिन मेरा इससे कभी इख्तलाफ ना हुआ। जब बीवी नाराज़ हो तो शौहर को चुप हो जाना चाहिए, इसी तरह जब शौहर को गुस्सा आए तो बीवी खामोश हो जाए। है ना घर बचाने वाले नुस्खे? बच्चियों को आने चाहिए ये। लड़ाई झगड़े आज क्यों होते हैं? तू तड़ाक, वो एक लफ्ज़ बोलेगा, वो दो बोलेगी आगे से कि तुमने मुझे क्या कम समझा, और फिर घर टूट जाते हैं। इसी तरह जब शौहर को गुस्सा आए तो बीवी खामोश हो जाए, यहाँ तक कि गुस्सा ठंडा हो जाए। सबका ठंडा हो जाता है वक्त पे, याद रखिए। जज्बात एतदाल पर आए और दिल का इज़्तिराब ख़त्म हो जाए। इब्नुल जौज़ी ने इनकी बड़ी ही मारूफ किताब है सईदुल खातिर में लिखा है कि जब देखो कि साथी नाराज़ है और गुस्से में बोलता जा रहा है तो इसको बेपरवाही से टाल दो, इस पर इसका मुआवजा ना करो। यानी हर बात पे यस क्यों कैसे जवाब दो बताओ। यानी आप देखिए कि बहुत क्वेश्चनिंग बातें भी दूसरे को चिड़ में डाल देती है ना। आप हर वक्त अगले का एहतसाब करते रहें तो उसको तो बुरा लगेगा, क्योंकि इस वक्त नशे की सी हालत में है, इसे नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहा है। और सच है कि गुस्से में इंसान वाकई अपने इख्तियार में नहीं होता, इस पर शैतान गालिब है, तबीयत में हैजान है, अक्ल पर पर्दा पड़ गया। इसलिए कुछ देर तक तो सब्र करो, इसको ज़्यादा अहमियत ना दो। अगर आपने इसकी बात पकड़ ली और इसके मुताबिक जवाब देना शुरू कर दिया तो आपकी मिसाल ऐसी होगी कि अक्लमंद मजनू से मुकाबला कर रहा है कोई मुकाबला? यानी एक शख्स है जिसकी अक्ल नहीं, दीवाना है, मजनू, आप जाकर उससे मुकाबला करेंगे? वो तो बेचारा हारेगा। या जैसे ठीक ठाक आदमी बेहोश को सरजंश कर रहा है, यानी एक बंदा ठीक है, एक बेहोश है, तो आप बेहोश को बुरा भला कहेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? इसमें आपकी ही गलती होगी, आप तो इसे काबिले रहम समझें, इससे लुत्फ़ लें कि तुंक मिजाजी। तुंक मिजाजी कहती है बड़ी जल्दी गुस्से में आना, तुंक मिजाजी ने इसे कहाँ पहुँचा दिया है। ये जान लीजिए कि जब वो मुतनब्बे होगा, मुतनब्बे क्या होता है, नबा से खबर होगी, जब उसको असल चीज़ का पता चलेगा, इसे नदामत होगी, और आपके सब्र कर लेने का इतराफ़ करेगा। और आप मान लीजिए, जिसकी ज़्यादती पे आप खामोश हो गए, बाद में वो आपको ज़रूर सॉरी करेगा, पक्की बात है। शर्त एक है, आप एक भी लफ्ज़ ना बोलें। उसको आपकी खामोशी से समझ आ जाएगा कि कोई गड़बड़ है। और अगर आपने एक भी बात कर दी, वो कहेगा तुमने भी तो ये कहा था ना, तुमने गुस्सा दिलाया मुझे। कम से कम इतना करें, ये बहुत अहम नुक्ता है, कि इसे बिल्कुल छोड़ दें। लेट इट गो, लीव हिम अलोन। दूसरे कमरे में चले जाएं। अगर वो गुस्से में कि दूसरे कमरे में गया तो जाने दीजिए। पीछे भागना, जज्बातियत, रोना धोना और जलती पे तेल डालता है। कब तक छोड़े रखें? जब तक वो इत्तेदाल में आ जाए, और जैसे कहें कि रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रोटी भी गरम गरम मुंह में डालेंगे ना, तो अपना ज़ुबान भी जलेगी, हाथ भी। ज़रा सी ठंडी करके खाइए। जब बाप नाराज़ हो तो बेटे को, शोहर नाराज़ हो तो बीवी को, इसका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ देखिए कि शोहर की नाराज़गी पे बीवी को कहा गया है, क्योंकि अल्लाह ने औरत के मिजाज में नरमी रखी है। मर्द बाज़ दफ़ा अपनी अना की वजह से भी पीछे नहीं आता। उसको यकीन भी होगा ना मैंने गलत किया, वो फिर भी नहीं मानेगा। औरत बेचारी कुछ ना भी करे कहेगी हाँ हाँ मेरी गलती थी, और कुछ नहीं तो यही गलती थी कि आपसे शादी की, मैं इसको भी मान लूँ। और इसी तरह से एक और बात कीजिए कि इसे अपनी बात कहने का मौका दें। शायद उसकी बात सही हो और आपको समझ आ जाए, क्योंकि जल्द ही इसे नदामत होगी। लेकिन अगर गुस्से की हालत में इसका मुकाबला किया गया तो इसकी हिद्दत बढ़ जाएगी, और गुस्सा ख़त्म होने के बाद भी इसकी अदावत ना जाएगी। यानी गुस्सा दूर होगा लेकिन वो एक ज़ख़म रहेगा दिल में, जो गुस्से की हालत में कील लगा था उसका सुराख नहीं जाता। ज़्यादातर लोग इसके बरखिलाफ़ अमल करते हैं। आदमी गुस्से में जो बोलता है वो इसका तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, हालांकि ये हिकमत का तकाजा नहीं, लेकिन तकाजाए हिकमत को समझदार ही समझ सकते हैं। तो क्या पता चला? मुस्कुराहट से आगाज़ कीजिए। आप देखिए, बड़ी से बड़ी लड़ाई को आप सिर्फ़ एक स्माइल से ख़त्म कर सकते हैं। आपको यकीन भी है ना कि जो घर में दाखिल हुआ है ये बस मुझसे लड़ने आया? आप स्माइल दीजिए, देखिए कहाँ लड़ेगा, कैसे घबराहट होगी। एक मौके पे एक बच्ची थी, तो कोई खटपट हो गई फ़ोन पे सास के साथ, तो उनकी सास ने कहा ठहरो मैं आके बात करती हूँ। फ़ोन बंद कर दिया, ये कांपने लगी। अब क्या होगा? उसने सवाल किया, फ़ोन किया, मेरी सास आ रही है, उनके तेवर अच्छे नहीं, मैं क्या करूं? एक ही लफ्ज़ उनको सिखाया, आप उनके आते ही स्माइल दें और उनका ख्याल करें। इतनी बड़ा मुश्किल है, वो गुस्से में बहुत है, करके तो देखिए। और आपको पता क्या हुआ? बड़ा ही उसने दिल पे जब्त करके अपनी सास को या जो भी बुज़ुर्ग थे उनको आते देखा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, सामान दें, चीज़ें दें, इतने आराम से बोली। सास को याद ही नहीं रहा, बाद में कहती मुझे तो याद ही नहीं आया, मैं तो तुमसे लड़ने आई थी। खेल विद काइंडनेस, विन विद काइंडनेस। और आज ये भूला हुआ सबक बच्चियों को, बच्चों को, सबको सिखाने की ज़रूरत है। तो आप देखिए कि हमने आज मुस्कुराहट के साथ साथ गुफ्तगू के आदाब भी सीखे हैं। यानी मुस्कुराहट से इस्तकबाल करना है, गुफ्तगू का आगाज़ हमेशा मुस्कुरा कर, कोई भी बात आप दर्द शुरू करते हैं पहले स्माइल दीजिए, आप सबक सुनाते हैं स्माइल दीजिए, क्योंकि मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना भी सदका है। फिर आप देखिए कि सलाम से आगाज़ कीजिए। गुफ्तगू की इब्तिदा में जब सलाम होगा तो सलामती होगी ना, अस्सलाम वालेकुम, तो आप फिर उससे कैसे लड़े? आपने तो खुद ही कह दिया कि मैंने तुम्हारे लिए सलामती का पैगाम दिया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई मिले मुसलमान को तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू के। फिर नरम और भली बात कीजिए, मुखातिब से नरमी और खंदा पेशानी से पेश आना चाहिए और भली बात कहनी चाहिए। अल्लाह सूरत निसा आयत 9 में क्या फरमाते हैं? बस लाजिम है कि वो अल्लाह से डरें और सीधी बात कहें। फिर इसी तरह एक और अदब है कि ताना जनी और तन से इज्तनाब कीजिए। दूसरों को पिछली बातों के ताने ना दें और ना ही तंज के तीर चलाइए, क्योंकि सूरत हुमज़ा क्या है? वैलुल्लिकुल्लि हुमज़तिल्लुमज़ा। बड़ी हलाकत है बहुत ताना देने वाले, बहुत ऐब लगाने वाले के लिए। सवाल लिखिए कि मुस्कुराहट के फ़वाद क्या हैं। तो 5 फ़वाद नोट कीजिए। पहली बात है, सुन्नत रसूल समझ के मुस्कुराएंगे तो सुन्नत का अजर। फिर कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा। आज डॉक्टर्स ने बता दिया कि जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी बॉडी से बहुत सारे पॉजिटिव यानी कुछ ग्लैंड्स उनमें से रतूबतें निकलती हैं। फिर मुस्कुराहट का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, रिश्ते मजबूत होते हैं। टूटे हुए रिश्तों को मजबूत कीजिए स्माइल के साथ। आप कहते हैं ना एल्फी लगाएं, अल्फी तो लग गए, आप मुस्कुराहट से अपने सारे मामलात को दुरुस्त कर सकते हैं। आप देखेंगे कि स्माइल के साथ, अच्छे अखलाक के साथ इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी मजबूतियाँ आती हैं। और किसी ने कहा कि रिश्ते कब टूटते हैं, जब जुबान तेज़ होती है। जब हम जल्दबाज होते हैं तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरी जुबान की तेज़ी से मेरे इर्द गिर्द वाले परेशान तो नहीं है? फिर तनाव कम होगा, यानी प्रेशर कम होगा, दिल पुरसकून होगा, यानी हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत कम होता है मुस्कुराने वालों को, क्योंकि बॉडी पहली बड़ी नॉर्मल रहती है और इसी तरह खुशगवार और लंबी ज़िंदगी की तरफ ले जाती है मुस्कुराहट। एक सवाल लिखिए, घरेलू झगड़ों की अमूमी वजूहत क्या होती हैं? पूरा लेक्चर है इसी नाम से, कि झगड़े क्यों होते हैं या झगड़ों का इलाज क्या है। तो पहली बात है शोहर और बीवी दोनों का, यानी एक का या दोनों का या दोनों में से एक का नशूस। और नशूस क्या है? उठना, उठान, खुद को बड़ा समझना। जैसे इंसान अपने साथी को अपने से हल्का समझे, और होता है कुछ मर्द अपनी बीवियों को बेवकूफ़ समझते हैं, पढ़ी लिखी नहीं हो, गांव से आई हो। कुछ लड़कियां पाकिस्तान से शादी करके ले आएंगी तो मर्दों को कहेंगी, तुम्हें अक्ल ही नहीं, मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं तो ब्रिटिश हूँ, मेरे पास तो कैनेडियन पासपोर्ट है। तो ये भी एक नशूज होता है, इंग्लिश का बोलना बहुत बड़ा नशूज है। फिर इसी तरह वजह दूसरी क्या होती है झगड़ों की? खामियों पे नज़र होती है। आप खूबियों पे नज़र रखिए, तबीयतें नहीं मिलती, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। फितरी तौर पे भी कुछ ना कुछ तबीयतों में इख्तलाफ होता है। फिर दरगुजर नहीं करता इंसान, बदकलामी पे आ जाते हैं। और दो में से एक, या एहसास कमतरी या एहसास बरतरी। मर्दों के अक्सर गुस्सा करने की वजह एहसास कमतरी होती है, लिख लें, और औरतों के गुस्सा करने की अक्सर वजह एहसास बरतरी होती है। ये असूल लिख लें, आप सिर्फ इस एक पे काम करें। देखिए, मर्द को इज्जत देना शुरू करते हैं, उसके एहसास कमतरी ख़त्म हो जाएगी। और औरत को जो बहुत ही एहसास हो गया ना कि मैं बहुत बड़ी, उसको ज़रा सा उसके हिसाब से रखिए, ठीक हो जाएगी। जिन औरतों को बहुत लाड प्यार भी मिलता है ना, वो भी बिगड़ जाती हैं। फिर इस तरह इलाज भी ले लीजिए, घरेलू झगड़ों का इलाज। जौज को इज्जत और प्यार दीजिए, शौहर बीवी को इज्जत और प्यार दे, बीवी शौहर को दी। खूबियों पे नज़र रखिए खामियों की बजाय। एक दूसरे की ज़रूरियात और पसंद और नापसंद का ख्याल रखिए। और दरगुजर से काम लीजिए, नरमी से बात करें, सब्र और बर्दाश्त से मामला करना सीखें। आप देखेंगे कि इससे कितनी खैर होगी। चलिए, आखिरी टॉपिक आज की नशिस्त का, जज्बा इंतकाम गुस्सा करने वालों के लिए जहर है। यानी ये जो दिलों में ना, मैं इंतकाम लूँगी, आई विल टेक रिवेंज, तो इसके बारे में किताब है अल मसलूबू फिल तारीख। इसमें बाज़ इन जाबिरों के किस्से हैं जिन्होंने दुश्मनों को शदीद ईज़ाएँ पहुँचाई और तकलीफ़ें पहुँचा पहुँचा कर मारा, फिर इनको कत्ल करके चैन ना मिला तो इन मर्दों को सूली दी। ज़ाहिर बात है कि मुर्दे को सूली से ना तकलीफ़ होती है ना कोई एहसास, क्योंकि रूह जिस्म का साथ पहले ही छोड़ चुकी है। लेकिन ज़िंदा कातिल को इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ईज़ा पहुँचा कर सुकून मिलता है। ऐसे अज़ियत पसंदों के दिल की आग कभी ठंडी नहीं होती, इनके इंतकाम का शोला नहीं बुझता, हत्ता कि वो दुश्मनों से पहले इन्हीं को अंदर से जलाता रहता है। क्या ये ताज्जुब और अफसोस की बात नहीं कि बनी उमैया के सकूत, सकूत कहते हैं गिरना यानी डाउनफॉल, के बाद बनू अब्बास के बास खुलफा ने इंतकाम की आग यूं ठंडी की, पहले मरे हुए मुर्दों और इनकी हड्डियों को निकाल कर सूली पर लटकाया, फिर इन्हें जिंदा जला दिया। ये इसी अंधे जज्बे इंतकाम का शख्साना था जो खुद मुंतकिम यानी इंतकाम लेने वाले की ज़ात के लिए भी सुहाने रूह होता है। यानी जो इंतकाम ऐसा ले रहा होता है उसको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है ऐसे लोगों को देखना। इसके असाब, इसकी रूह और सुकून और इत्मीनान सब को गारत कर डालता है। शायर कहते हैं कि जाहिल को दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना वो खुद अपने आप को पहुंचा देता है। जब वो तन्हा होते हैं तो गैज़ व गज़ब में अपनी उंगलियां चबा डालते हैं, कहो अपने गुस्से से मर जाओ। तो क्या सीखा कि हमने अपने आप को इस पे लेना है? एक हल्का सा वक्फ़ा लीजिए, गैप लें, जहन को रिलैक्स करें, और ये चंद जुमले सुनिए। किसी बंदे पे जुल्म ज़्यादती हो, दुश्मन मुसल्लत हो जाएं, तो इसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ायदा देती है वो खलूस दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार है। اس کی سعادت کی علامت یہ کہ اپنے نفس اور گناہوں اور عیوب یعنی عیبوں کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کرے، اور جو آفت نازل ہوئی اس پر سوچ بچار کے لیے وقت ہی نہ چھوڑے بلکہ توبہ اور اصلاح نفس میں لگ جائے، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ سنبھال لے گا، وہ مدد اور نصرت ضرور کرے گا۔ اگر ایسا کر لے تو اس کی سعادت کے کیا کہنے، اور اس کی مصیبت بھی کیا ہی برکت والی ہوگی، کیا اچھا اثر اس پر پڑے گا۔ لیکن توفیق و ہدایت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ دے سکتا ہے وہ کوئی روک نہیں سکتا، جو نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور ہر کسی کو اس کی توفیق ملتی بھی نہیں، نہ اس کی معرفت ہوتی ہے، نہ ارادہ اور نہ قدرت، اور اپنی ساری قوت اور طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ شاعر نے کہا، پاک ہے وہ جو ہمیشہ عفو سے کام لیتا ہے اور ہم ہمیشہ کوتاہی کرتے ہیں۔ بندہ جب بھی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے، جو خطہ کار ہے اسے بھی دیتا ہے، اس کا جلال اسے گناہگاروں کو بھی دینے سے نہیں روکتا۔ یعنی اللہ کی ہستی تو گناہگاروں کے اوپر بھی اتنی رحمت کرے اور ہم اپنے ہی جیسوں کو معاف نہ کریں، تو کیا سیکھا، جذبہ انتقام کو چھوڑ دیجئے، یہ آپ کے اپنے لیے زہر ہے۔ آپ اس زہر کو اپنی زندگی میں کیوں ڈیلتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو ہوگا کیا، آپ خود جلیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اگر چولہے میں آگ لگائیں گے، جلائیں گے، تو کیا ہوگا نتیجہ، آپ خود جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کی اپنی زندگی اجیرن ہوگی۔ اور ہر ایک کو یہ سکھائیے، کیونکہ انتقام کے جذبے بعض دفعہ خودکشی تک لے جاتے ہیں بندے کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسلام میں ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، یعنی ذرا سا جذبہ انتقام کو اسلام کی روشنی میں دیکھ لیجئے، تو جذبہ انتقام کا کیا ہے کہ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں آپ، لیکن ظلم کے بدلے زیادہ ظلم نہیں کریں، ورنہ بدلہ لینے والا خود ظالم بن جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جذبہ انتقام کی وجہ سے دور جاہلیت میں نسل در نسل قتل ہوتے تھے، آج بھی کئی قبائل میں نسل در نسل قتل ہوتے ہیں۔ جذبہ انتقام ہی ہے جس نے پہلی دنیا کی جنگ یعنی فرسٹ ورلڈ وار قائم کی، اور انتقام کی آگ میں جلنا بے سکونی کی زندگی بسر کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی پہ بھی ظلم ہوا تو آپ اس کے مقابلے میں کیا کرتے، یعنی طائف میں جب آپ کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تو آپ کو پہاڑوں کے فرشتے نے آفر کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑ اس بستی کے اوپر ڈال دوں، یعنی ان کو مسل دوں، تو آپ نے کہا نہیں، ان کی اندر ایک ایسی نسل پیدا ہوگی جو اللہ کی عبادت کرے گی۔ یہ بخاری کی ایک روایت کا خلاصہ ہے 3231۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وحشی، آپ کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو آپ نے کہا تمہارا نام وحشی ہے، کہا جی، تم نے حمزہ کو قتل کیا تھا، جی، کہا وہی ہے، کہا اچھا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو بس مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ، یعنی تمہیں دیکھ کر چچا یاد آتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 4072۔ تو پھر ہم نے کیا سیکھا، اسی کے اوپر آج کا سیشن پورا ہوگا، کہ مظلوم کے کرنے کے کام کیا ہے کہ جذبہ انتقام دل سے نکال دے، اپنے نفس کی اصلاح میں لگا رہے، کثرت سے توبہ کرے، معاملہ اللہ تعالیٰ پر ڈال دے۔ لا تصریب علیکم اليوم حضرت یوسف نے بھی کہا اور اللہ کے نبی نے بھی کہا، یعنی آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا اور اللہ کے نبی نے مکہ میں آپ کو ستانے والوں کو یہ جملہ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر لگا دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔